इन हालात में अमरीकी कहते हैं, जनाब आप हमारे नक्शे के बीच में आते हैं, लिहाजा हमें आपसे कुछ परेशानी है। आप जरा मुलाहिजा करें कि अमरीका के पांचवें बहरी बेड़े का मरकज बहरा हिंद बहरैन में है, सेंट काम का मरकज दोहा कतर में है, इसकी अहम तरीन अस्करी छावनी सऊदी अरब में है, एक समंदरी छावनी का मरकज कुवैत में है, दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी सफारतखाना इराक में है, एक बड़ी छावनी बडगाम अफगानिस्तान में है। इस खित्ते में अमरीका हमें घेरे हुए है, चार अतराफ में तकरीबन 2-3 हजार किलोमीटर के दायरे में हमें घेरा हुआ है। DGZ डेजिग्नेटेड ग्राउंड जीरो। फौजी जब हमला करना चाहते हैं तो पहले इनके पास एक नक्शा होता है जिसमें दुश्मन मुल्क के अंदर तमाम अहदाफ ग्राउंड जीरो पर होते हैं। DGZ डेजिग्नेटेड ग्राउंड जीरो, वो जगह जो जल्दी तबाह हो सकती है। अमेरिका जानता है कि अगर वो ईरान के साथ जंग शुरू करता है तो 3000 किलोमीटर के दायरे यानी सेंटकॉम के सारे इलाके में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के इब्तदाई लम्हात के अंदर दोहा कतर में सेंटकॉम का मरकज तबाह कर दिया जाएगा। कतर में उसका मरकज तबाह होने से मुराद ये है कि पूरे मुल्क कतर के तेल और गैस के जखायर तबाह हो जाएंगे। बहरैन पांचवें अमरीकी बहरी बेड़े की हिफाजत में लगा हुआ है। अगर अमरीका हम पर हमला करता है तो इब्तदाई लम्हात में ही बहरैन के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। कुवैत अमरीकी समंदरी छावनी का चौकीदार है, इराक में अमरीकी अड्डे हैं, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान में भी अमरीकी अड्डे हैं। अगर आप तुर्की पर निगाह करें, वहाँ हवाई अड्डा इंजरलीक जहाँ अमरीका ने अपने एटमी हथियार महफूज कर रखे हैं। ये तुर्की का शहर इंजरलीक मरकजी सरबराही का हिस्सा नहीं, मगरबी सरबराही का हिस्सा है। हमने किसी मुल्क से कोई मुआहदा नहीं कर रखा, हमने खित्ते के तमाम मुमालिक के लिए ऐलान किया है कि जिस किसी मुल्क से हम पर हमला होगा, वाजे है कि हम भी हक रखते हैं, हम उस मुल्क के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करें। सब जानते हैं दो मुमालिक के दरमियान रवाबित के मुआहदों में ये बात वाजे होती है। अब वजीर खारजा उठते और कहते हैं कि हम एक दूसरे पर तजावुज ना करने के मुआहदे करें, इसकी जरूरत ही नहीं, ये तो ऐलान हो चुका है पहले से ही। इनमें से हर एक मुल्क के साथ इलाकाई सतह पर गुफ्तगू और मुआहदे हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल हर मुल्क से कहा जा चुका है कि जनाब आपके मुल्क से हम पर हमला नहीं होना चाहिए और कोई दूसरा भी आपके मुल्क से हम पर हमला ना करे। अब ऐसा भी नहीं होगा कि सऊदी अरब खुद तो नहीं लेकिन अमेरिका इसकी जमीन से हम पर हमला कर दे, कतर तो नहीं लेकिन कतर की जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। किसी भी हमले का मंबा जिस तरफ से भी होगा, वाज़े तौर पर ईरान भी हक रखता है कि मुकाबला बेमिसल करते हुए रद्द अमल का भरपूर इजहार करे। खौफ का तवाज़ुन, नाकाबिले तलाफी नुकसान, काबिले इनेताफ रवैया और यकीनी नाबूदी, तमाम चारों दिफाई मराहिल में जवाब दिया जाएगा। सेंटकॉम जब से खित्ते में आया है और उसने यहाँ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, स्ट्रेटेजिक तहकीकात का मरकज समा सेंटर जो कि अमेरिका के इदारे ब्रुकलिन के साथ वाबस्ता है, ये ब्रुकलिन इदारा अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी का अहम तरीन नजरियाती इदारा है। सन 2009 में इसकी जानिब से एक दस्तावेजी रिपोर्ट जारी हुई जिस पर 15 दानिशवरों के दस्तखत थे। इसका अनुमान था कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे भी गौर कीजिएगा। इसमें ईरान की तबाही के लिए 9 रास्ते जिक्र किए गए ताकि तेहरान की हुकूमत गिराई जा सके। इन ऑप्शंस में से 2 अस्करी राय हल थे, एक तख्ता उलटना था यानी फौज और सिपा से करीबी रबते करके बगावत पर उकसाया जाए, इनके जरिए तेहरानी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। इसके जवाब में कहा गया कि हमारा तेहरान में सफारत खाना नहीं है, इसलिए हम फौज और सिपा से कुर्बत अख्तियार नहीं कर सकते और इनके लोगों को खरीद नहीं सकते। एक रास्ता ये था कि हम बराह रास्त ईरान पर हमला करें। इसके जवाब में कहा गया कि ईरान पर हमला करने के लिए हमें 12 लाख से 14 लाख तक फौजियों की जरूरत होगी। अमेरिका जो कि खत्ते में 50,000 से 1 लाख तक फौज रखता है, किस तरह ईरान पर हमला कर सकता है? इराक पर हमले के लिए ये लोग 2 लाख फौजी लेकर आए थे, अब उन्होंने ऐलान किया है और ट्रंप ने कहा है कि 1,500 फौजियों का इराक में इजाफा कर दिया जाए। इसके बाद ये रोशन फिक्र लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी असलाह तक हाथ में नहीं लिया, जिन्हें अस्करी मामलात की अलिफ बे नहीं मालूम, लोगों को डराते हुए कहते हैं, हाय देखो अमेरिका खत्ते में फौज इकट्ठी कर रहा है। हम कहते हैं तो ले आए। हाय देखो अमेरिका B-52 लेकर आ गया। B-52 तैयारा 60 साल पहले का है। ये 60 साल पहले वाले तैयारे वियतनाम में जाया करते थे, ऊपर से बमबारी किया करते थे, लेकिन क्या वियतनाम में लोगों के इरादे को शिकस्त दे सके? अब वो 4 अदद B-52 लेकर आया है तो क्या वो ईरानी कौम के इरादे को शिकस्त देगा? ये मजाक नहीं तो और क्या है? अमरीका जब वियतनाम पर बमबारी कर रहा था और फिर किस तरह वियतनाम से फरार किया? अमरीकी सफीर और सिफारत का अमला जुनूबी वियतनाम के साइगोन शहर में सिफारत खाने की छत से फरार किया। شمالی ویتنام سے آئے اور جنوبی ویتنام پر قبضہ کیا. تو یہ امریکی کیسے بھاگے ہیں؟ امریکی سفارت خانے کی چھت سے ہیلی کاپٹر کی مدد سے بھاگتے رہے. دستاویزی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں. یہ مغرب زیادہ لوگ اور لبرل افراد جو امریکی سفارت خانے پہنچے تھے تاکہ امریکہ انہیں نجات دے, یہ سارے ہیلی کاپٹر کی سیڑھی کے ساتھ لٹک رہے تھے تاکہ نجات حاصل کر سکیں. B-52 کی بمباری کے باوجود امریکی مجبور ہو گئے کہ سائیگون سفارت خانے کی چھت سے ہیلی کاپٹر کی مدد سے فرار کریں. اب یہ 2 عدد 4 عدد B-52 خطے میں لے کر آئے ہیں. ایسے موقع پر کچھ روشن فکر, وابستہ, ضمیر فروش اور جھوٹے افراد ہماری عوام کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں, لوگوں آپ کو کیا معلوم, B-52 آ گیا ہے, جائیں مذاکرات کر لیں. اے لوگوں, کیا آپ نے دیکھا کہ بحری بیڑا ابراہم لنکن آ گیا ہے, ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. میں اپنے عزیز قوم سے یہ بات عرض کر دوں کہ خطے میں پہلے سے ہی 130 امریکی بحری بیڑے اور جہاز موجود ہیں. ہر بر اعظم میں طیارہ بردار 2 بحری بیڑے مستقل طور پر موجود ہیں. جس بحری بیڑے کا دفتر بحرین میں ہے, اس کے ذریعے پورے بحرہ ہند آسٹریلیا تک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. لہذا 2 عدد بحری بیڑے مستقل طور پر یہاں موجود ہیں. بنیادی طور پر ان کے اڈے یہاں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے وہ اپنی فوج کو خطے میں لے کر آئیں گے, بلکہ ان کے افواج خطے میں پہلے سے موجود ہیں. اس کے باوجود ان کی جو افواج یہاں خطے میں یا آس پاس کے اڈوں پر موجود ہے اسے بھی لے کر آئیں, تب بھی وہ ایران کے ساتھ جنگ کے لیے کافی فوج نہیں رکھتے. تو پھر کیوں اپنی عوام کو ڈرائیں؟ اسلامی جمہوریہ ایران دفاعی مراحل سے آگے نکل کر دشمن کو بے بس کرنے کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اس لیے کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران کا قد بہت بلند ہو چکا ہے اور دشمن میں اتنی طاقت و ہمت نہیں ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر سکے. بنابراہ دنیا میں نیشنل اسٹیٹ تشکیل دی جا چکی ہے. یہ اسٹیٹ اقوام متحدہ ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹس. یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے, بلکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ دنیا کے 152 ممالک میری ریاستیں ہیں اور میں عالمی حکومت ہوں. عالمی قوم کون ہے؟ یہی اقوام متحدہ ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ بھی میرے ماتحت ہے. اب چونکہ اقوام متحدہ میرے مطابق کام کر رہا ہے, ایران اس کے اندر مشکلات پیدا کر رہا ہے. میں نے دنیا کو اپنی ریاستوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ایران مرکزی ریاست کے درمیان واقع ہے, لہذا ایران کو ایک نارمل ملک میں تبدیل ہونا ہوگا, ورنہ ایران ایک دہشت گرد قوم ہے. ہم ایسے ملک کے مقابلے میں کھڑے ہیں. امریکہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے 8 طریقوں پر غور کر رہا ہے. جی ہاں, ذرا دیکھیں کہ پیمپیو کہتا ہے کہ ایک نارمل قوم بننا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں کہتا ہے ا ٹیررسٹ نیشن. پومپیو کہتا ہے کہ ا نارمل نیشن, ہر صورت ایک نارمل نیشن بن جائے. یعنی کیا؟ یعنی ساری دنیا, جیسے روس نے قبول کر لیا امریکہ عالمی امپائر ہے, چین نے مان لیا ہے, جاپان نے تسلیم کر لیا ہے, جرمنی قبول کر چکا ہے. ہم نے کہا جرمنی تم بینز بناؤ, جاپان تم ٹویوٹا بناؤ, روس تم S-400 میزائل بناؤ, چین تم عالمی منڈی دیکھو, لیکن تم سب لوگ میرے سامنے جھکے رہو. زندگی کے طریقے میں, صنعت میں, FATF میں, IMF کے ضوابط میں, عالمی بینک میں, یونیسکو کے اصولوں میں ہماری اطاعت کرو. لیکن ایران کہتا ہے میں خود ہوں, میں اپنی سوچ بچار خود کروں گا, میرے اعتقادات اپنے اعتقادات ہیں. اے امریکہ, میرا تمہارے ساتھ اسٹریٹجک نہیں بلکہ نظریاتی سطح پر اختلاف ہے.